नमस्कार। कभी सोचा है आपने, जैसे पुराने लकड़ी के संदूक होते हैं ना, उनमें लोहे की अटैची और फिर उसमें रखे होते कीमती जेवर।
हाँ बिल्कुल, जैसे ईश्वर ने भी ना सबसे मूल्यवान चीजें गहराई में ही छिपाई हैं।
सही कहा, जैसे जमीन में देखो, मिट्टी ऊपर, फिर पानी और खनिज तेल तो और भी गहरे मिलते हैं।
और समुद्र में भी खारा पानी ऊपर तैरता है पर मोती तो नीचे बिल्कुल तह में मिलते हैं।
तो इसी तरह आज हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की वास्तविक संपदाओं पर। ये चर्चा पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत गहरे उद्बोधन पर आधारित है जो अखंड ज्योति पत्रिका में छपा था।
जी, उद्बोधन का नाम ही है अध्यात्म की वास्तविक संपदाएं।
हाँ, तो आज हम समझना चाहते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व की परतें क्या हैं और अध्यात्म का वो असली मतलब, वो असली फायदा क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इसे बस सतही तौर पर देखते हैं, चमत्कारों की उम्मीद करते हैं।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की, मतलब इंसान की, तीन परतें होती हैं।
तीन परतें? अच्छा, कौन कौन सी?
देखिए, सबसे बाहर है हमारा ये स्थूल शरीर, मतलब ये चमड़े का शरीर जो दिखता है। ये मेहनत करता है, साधन जुटाता है, मकान, कारखाने वगैरह।
हाँ, जैसे एक मजदूर दिन भर काम करता है।
बिल्कुल, इसकी अपनी कीमत है पर वो सीमित है, जैसे मजदूर की दिहाड़ी। हाँ, लोग इसका ध्यान रखते हैं, सेहत, सुंदरता का।
ठीक है, और दूसरी परत?
दूसरी जो इसके भीतर है वो है सूक्ष्म शरीर, यानी हमारा मन और हमारी बुद्धि। ये ज्ञान और विचारों का शरीर है।
अच्छा, मतलब सोचने समझने वाला हिस्सा।
हाँ, दुनिया में जितना भी बड़ा काम हुआ है, विज्ञान, साहित्य, संगीत, वो सब इसी सूक्ष्म शरीर की देन है। दुनिया चलती ही अक्ल से है, दौलत भी शारीरिक मेहनत से ज्यादा अक्ल से कमाई जाती है।
सही बात है, लोग इसे शिक्षा से, अनुभव से तेज करते हैं।
एकदम, और ये स्थूल शरीर से कहीं ज्यादा कीमती है।
और तीसरी परत, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं,
वही सबसे महत्वपूर्ण है। वो है कारण शरीर, हमारी आध्यात्मिकता की जड़। ये सबसे भीतरी, सबसे मूल्यवान परत है,
कारण शरीर।
हाँ, अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि यही हमारी असली संपत्ति है। इसी को विकसित करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने भारत को जगत गुरु बनाया था, सोने की चिड़िया बनाया था।
लेकिन आम तौर पर तो लोग अध्यात्म का मतलब कुछ और ही समझते हैं, है ना? जैसे स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, या कोई सिद्धि मिल जाएगी।
हाँ, यही तो भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति। लोग सोचते हैं अध्यात्म मतलब कुछ चमत्कार, कोई बाजीगरी, जैसे किसी ने हवा में से इलायची निकाल दी, या कान में कोई आवाज सुनाई दे गई जिसे नादियों कह दिया।
हाँ हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं।
पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म कोई जादू की छड़ी या कोई पूजा पाठ की सिर्फ तकनीक भर नहीं है।
तो फिर क्या है
अध्यात्म? असल में जीवन जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है, सोचने का ढंग है। ये तो जैसे दूध में घी होता है ना, वैसे जीवन में घुला मिला होना चाहिए। और इसका असली आधार है साधना।
साधना, उपासना और साधना में क्या फर्क है? लोग अक्सर पूजा पाठ, भजन को ही सब कुछ मान लेते हैं।
बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, उपासना यानी पूजा, भजन, मंत्र जाप, ये बाहरी क्रिया है। ये जरूरी है पर ये सिर्फ एक औजार है। जैसे चेक काटने के लिए कलम चाहिए, वैसे ही।
ठीक है, कलम।
पर साधना है खुद को साधना, आत्म सुधार करना, अपने जीवन को पवित्र बनाना, उत्कृष्ट बनाना, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की गंदगी को साफ करना, उदार बनना। ये बैंक बैलेंस की तरह है।
अच्छा, तो उपासना कलम है और साधना बैंक बैलेंस।
बिल्कुल, अब अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो खाली कलम से चेक काटने का क्या फायदा, वो बाउंस हो जाएगा।
यानी सिर्फ मंत्र जपने से चमत्कार नहीं होते,
सच्ची साधना है।
ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
और पूज्य गुरुदेव एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता, सच्ची साधना सिर्फ परलोक नहीं सुधारती।
अच्छा।
हाँ, वो इसी जीवन में, इसी दुनिया में ठोस भौतिक लाभ भी देती है। आपको ताकत मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा।
क्या इसके कुछ उदाहरण हैं?
बिल्कुल हैं। पूज्य गुरुदेव ने कई उदाहरण दिए हैं। हनुमान जी को ही लीजिए। कहते हैं आध्यात्मिक बल पाने से पहले वो थोड़े डरपोक स्वभाव के थे।
सच में?
हाँ, पर राम की भक्ति और साधना से उनमें कितना बल आया। असीम शारीरिक और मानसिक बल, पहाड़ उठा लिए, समुद्र नांग गए, लंका जीत ली। आज देखिए, राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, कितना सम्मान है।
हाँ, ये तो है। और बुद्ध का भी उदाहरण देते हैं शायद।
जी हाँ, भगवान बुद्ध एक छोटे से जागीरदार के बेटे थे, लेकिन आध्यात्मिक साधना से वो विश्वगुरु बन गए। सम्राट अशोक, हर्षवर्धन जैसे राजा उनके अनुयायी बने, अपनी सारी दौलत लगा दी।
नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बने।
बिल्कुल, और सोचिए अंगुलीमाल जैसे डाकू को बदल दिया उन्होंने। ये क्या थी? ये रूहानी ताकत थी, साधना का बल था।
और स्वामी विवेकानंद?
हाँ, वो तो नौकरी मांगने गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास, पर उन्हें मिला आध्यात्मिक बल जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यहाँ तक कि जमशेद जी टाटा को उन्होंने ही लोहे की खान का पता बताया था, ऐसा कहते हैं।
अच्छा।
और फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, पूरी दुनिया में फैला।
पूज्य गुरुदेव ने तो अपने जीवन से भी इसे साबित किया।
बिल्कुल, वो स्वयं कहते थे कि 71 वर्ष की उम्र में भी वो 5 व्यक्तियों जितना काम करते थे। कितना विशाल साहित्य लिखा उन्होंने, वेद, उपनिषद, पुराण सबका सरल अनुवाद किया, विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का संकल्प लिया।
और शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस्व, देश विदेश में 2400 से ज्यादा शक्ति पीठ, ये सब बिना किसी से मांगे करोड़ों की संस्थाएं खड़ी हो गई।
ये सब क्या था? ये साधना की शक्ति थी, आध्यात्मिकता का भौतिक प्रमाण था।
तो सार यही निकलता है कि जो सबसे गहरी परत है, हमारा कारण शरीर, हमारा आध्यात्मिक जीवन, वही असली खजाना है।
एकदम सही। और उसे विकसित करने की चाबी बाहरी कर्मकांडों में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर झांकने में, आंतरिक शुद्धि में, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में, यानी साधना में है।
और ये सोचने वाली बात है, हम अपनी सेहत के लिए, अपनी बुद्धि तेज करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, जिम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं।
हाँ?
पर ये जो सबसे कीमती अंदरूनी संपत्ति है, हमारा आध्यात्मिक पहलू, उसे विकसित करने पर ध्यान देना शायद जीवन को कहीं ज्यादा मतलब, कहीं ज्यादा समृद्धि दे सकता है। और जैसा हमने देखा, भौतिक रूप से भी।
बिल्कुल, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से।
तो आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर, आज हम ये सोच सकते हैं कि रोज की पूजा या मंत्र जाप तो ठीक है, पर क्या उससे एक कदम आगे बढ़कर हम अपने किसी एक विचार को, या अपनी किसी एक भावना को, या अपनी किसी एक बुरी आदत को थोड़ा सा सुधारने का संकल्प ले सकते हैं?
मतलब अपनी किसी छोटी सी गंदगी को साफ करने का प्रयास, या अपने व्यवहार में थोड़ी और उदारता लाने का?
हाँ बस इतना ही, शायद यही सच्ची साधना की तरफ पहला लेकिन सबसे अहम कदम हो सकता है।
बहुत खूब, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति।